This is a podcast for Radio Sangam, the number one followed Asian community radio station in the UK.
Hello everyone, मैं हूँ ऐश खान और कल मैं होंगी लाइव रेडियो संगम पर अक्सर सादिक के साथ. मेरे जितने भी यूके के फैंस हैं जो मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, लाइफ की हैपनिंग्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, पसंद नापसंद के बारे में, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी रेडियो संगम के लाइव सेशन में. तो मेरे जितने भी फैंस हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ट्यून इन कीजिए और इस सेशन को एंटरटेनिंग बनाइएगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड सी यू टुमारो.
जी वेलकम बैक, और आपको कहेंगे रेडियो संगम पर फिर से वेलकम. और हमारे साथ हैं जी पाकिस्तान से बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अपना नाम कमा रही हैं. यकीनन आप लोगों ने इनको बहुत पसंद भी किया होगा और आप आगे उनको पसंद भी करेंगे. अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे ऐश खान से, जो कि आज हमारे गेस्ट हैं, तो आपको मोर देन वेलकम. आप जरूर उनको अपना अपना यहां पर फील करवाइए. आपको बताना है कि जी रेडियो संगम जो है वो दिलों को मिलाता है. सो हम लेकर चलते हैं ऐश खान को ऑन एयर. अस्सलाम वालेकुम ऐश.
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल. कितनी अच्छी वाइब्स आई हैं, कितने अच्छे तरीके से बात हो रही है. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि आप मुझे और ठीक कर देंगी.
बिल्कुल, मेरी तो कोशिश पूरी है कि बहुत इंटरटेनिंग सेशन रहे ये हमारा, और आपके जितने भी लिसनर्स हैं वो एंजॉय करें इस सेशन को.
हाँ बिल्कुल बिल्कुल. थोड़ा सा हम नाम से स्टार्ट लेते हैं. नाम कैसे रखा, किसने रखा, क्या आपका वो इंडस्ट्री वाला नाम है या आपका अपना नाम था, किस तरह से यह हुआ?
नहीं अक्सर ये मेरा मीडिया नेम है, इंडस्ट्री नेम है. वैसे तो कॉलेज में इट वॉज माई निक नेम, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट पोर्टफोलियो शूट किया था तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया था, बिकॉज रियल नेम इज आयशा खान. सो उन्होंने मुझे बोला कि आयशा खान नाम से तो बहुत सी ऑलरेडी आर्टिस्ट काम कर रही हैं, तो अगर आपने एक स्पेसिफिक रिकग्निशन बनानी है तो यू शुड गो विद योर निक नेम. सो तब से फिर ये कि ऐश खान ही पड़ा, और अब तो ये है कि नोबडी नोज माई रियल नेम. इवन इन माई फैमिली एवरीबडी कॉल्स मी विद ऐश खान.
वेरी नाइस, वेरी नाइस. लाइवली नेम लगता है, अच्छा लगता है. और वैसे जैसे आपने कहा ना, बहुत सारी आयशाज थी, तो उन आयशाज में एक आयशा को अपनी पहचान बनाना और मुश्किल काम लगना था.
बिल्कुल बिल्कुल. और वैसे भी आपको तो पता है कि मीडिया इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना जो है वो इट्स नॉट दैट इजी. लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी, बट इट्स नॉट.
बिल्कुल बिल्कुल. और जबकि इतने सारे चैनल्स आ गए, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गया, सो डेफिनेटली मुश्किल काम है. थोड़ा सा मैं शुरू से बताइए कि कैसी थी आप बचपन में, कैसी थी, क्या बनने का शौक था और क्या बनी आप?
माय मॉम यूज्ड टू से मी कि जितना ये बोलती है और बातें करती है ये बड़ी होके बेनजीर बनेगी. मैं बहुत बोलती थी, इवन शीशे के सामने खड़े होके अकेली होती थी तो बातें कर रही होती थी, तो शायद उस वजह से मुझे शुरू से एज एन एंकर पर्सन मेरे अंदर जो था ना वो टैलेंट मुझे लगता है ज्यादा था. और ये है कि बट आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग एंड देन होस्टिंग और ड्रामास, तीनों चीजें साथ में रखी, बिकॉज मेरा मानना है कि इफ एनी गर्ल गॉट एनी टैलेंट और उसको अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो उसे अवेल करनी चाहिए. डजेंट मैटर कि अगर आप होस्ट हो तो आप होस्ट ही रहो, और अगर एक्टिंग में हो तो फिर एक्टिंग ही करो. अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपको आ रही हैं, तो आप जरूर ट्राई करो.
बिल्कुल. और जैसे आपने बताया कि वास्ट फील्ड है मीडिया, जो शोबीज है, इट्स नॉट ऑल अबाउट एक्टिंग, इट्स अबाउट एंकर. आप कैसे होस्टिंग करते हैं या आप किस तरह से सिंगिंग में आपने अपना नाम बनाते हैं या आप मॉडलिंग करते हैं. मॉडलिंग भी इट्सेल्फ मुझे लगता है बड़ा टाइम टेकिंग और बड़ा हार्ड वर्क है.
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बल्कि ज्यादा हार्ड वर्क है. लेकिन मॉडलिंग से थोड़ा सा ये बेनिफिट जरूर आपको हो जाता है कि अगर आप मॉडलिंग से स्टार्ट करते हो ना, बिकॉज आई फील लाइक इट्स अ स्टेप वन, वो आपको एटलीस्ट जो आप कैमरा शाय होते हैं वो आपका शाइनेस खत्म हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं कैमरा को फेस करने के. लेकिन मॉडलिंग भी इजी नहीं है, बिकॉज उसमें पहले आपको बॉडी लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है, अपना पॉस्चर, इवन जब आप क्लिक्स हो रहे होते हैं, पिक्चर्स हो रही होती हैं आपके, इवन आई बॉल के कहाँ पर रखना है, कितना एंगल पे रखना है, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम और वन और टू शूट्स के बाद ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको पता है हमारी यहाँ इंडस्ट्री ऐसी है कि देर आर नॉट सच अकेडमीज के जो आपको प्रॉपर ट्रेंड करते हैं. बस जैसे जैसे आप काम कर रहे होते हैं आपको अपना खुद से एक्सपीरियंस होता है और इट डिपेंड्स ऑन यू इन दी एंड कि आप में कितना टैलेंट है कि आप उस चीज को सीखते कितने टाइम में हो.
बिल्कुल. और अब जैसे आपने कहा ना कि आपकी अम्मी कहती थी आप बेनज़ीर बन सकती हैं या बनेंगी, अब मुझे लग रहा है कि जी जैसे आप बोल रही हैं ना, आप एक बहुत अच्छी होस्ट हैं, डेफिनेटली हैं, और अभी मुझे आप टफ टाइम देने लगी हैं मुझे लग रहा है.
बिल्कुल. होस्टिंग मैंने क्योंकि डिफरेंट न्यूज चैनल, डिफरेंट प्रोग्रामिंग चैनल्स के साथ मैंने काम किया है और लाइव इवेंट भी होस्ट किया है. तो बल्कि मुझे जिन एजेंसीज के साथ सो फार मैं लाइव इवेंट्स भी करती हूँ तो उनको होता है कि नहीं, जो ज्यादा लोग होते हैं ना उनको लगता है कि जी ऐश जो है ना वो पकड़ लेगी, काबू कर लेगी, बिकॉज आपको पता है लाइव ऑडियंस को कैटर करना भी बहुत मुश्किल काम होता है. और शायद यही वजह है कि एक पर्सनली भी एक इंसान जो थोड़ा टॉकेटिव होता है, मैं खामोश नहीं रह सकती. मेरी सबसे बड़ी सजा ये आई फील लाइक कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है कि इफ समबडी इज नॉट टॉकिंग टू मी, इवन इफ वी गो ऑन न्यू सेट्स और वर्किंग विद अ न्यू टीम, तो फर्स्ट यही होता है कि बस बातचीत शुरू करनी और बस जिसने एक बार बोलना शुरू कर दिया ना तो बस फिर तो खामोशी नहीं होनी.
बिल्कुल. मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी वो ना आप में, आपको पता चलता है पॉजिटिव वाइब्स आती हैं किसी बंदे से बात करने में. कोई किस लोगों से आप बात करते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि आप उनको आगे से क्या जवाब दें उनके हाँ के ऊपर. समटाइम्स मैं भी करती हूँ ऐसे, लेकिन जैसे आपने मुझे जैसे अस्सलाम वालेकुम बोला ना तो मुझे लगा कि जी आज तो अच्छी बातें होंगी.
बिल्कुल बिल्कुल. और इसलिए उम्मीद है कि आप बिल्कुल बोरिंग पर्सन से बात नहीं कर रही हैं और बिल्कुल लाइटली अच्छा. तो बहुत अच्छा, मुझे खुद आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बिकॉज पता है अक्सर इट्स एक्शन रिएक्शन.
बिल्कुल.
और जब दोनों तरफ से सेम चीजें एक इक्वली चल रही होती हैं तो फिर ज़ाहिर मजा आता है. और यकीनन आई एम श्योर कि हमारे जो लिसनर्स होंगे जो एट टाइम्स अगर हमें उस तरह से नहीं भी जानते या नहीं भी मालूम होता, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है, देन दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट.
इट इज. और कहां से आपको मिला, कैसे इंडस्ट्री में कदम रखा, कोई मौजजा हुआ या क्या कह लें, क्या किस तरह हुआ?
इट वॉज नॉट लाइक काइंड ऑफ अ मौजजा, बट हाँ यू कैन से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली में शोबिज का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं. नो बडी नोज के मीडिया चीज भी क्या है, उसमें कैसे जाते हैं और क्या, जैसे एक हमारी आम ऑडियंस हो. आई वॉज जस्ट लाइक दैट. बट ये था कि वन ऑफ माई कजन वॉज इंटरेस्टेड फॉर मॉडलिंग. सो मुझे याद है कि एक ऐसे ही न्यूज पेपर में एजेंसी की एड देखकर वी बोथ वेंट देयर. बट क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली मैं टॉकेटिव थी और मैं वर्किंग पर्सन भी थी, मैं ऑलरेडी जॉब भी कर रही थी, तो मेरा कजन था वो शाय निकला. ही वॉज शाय, वो बात भी नहीं कर पा रहा था और मैं क्योंकि बात भी कर रही थी तो वो गए मेरे कजन थे, लेकिन फिर उन्होंने वहां से हटकर मुझे बोल दिया कि आप क्यों नहीं ट्राई करते. और जब मैंने लाइफ का फर्स्ट एवर शूट किया तो आई फील लाइक ओ आई एम सो मच प्रिटी, सो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. वो जो मेरा शूट था ना उसने मुझे थोड़ा बूस्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो. और फिर मेरा जॉब को क्विट करना ऐसा ही था कि वेरी नेक्स्ट डे ओ एक्सक्यूज मी मैं तो बिल्कुल यहाँ काम नहीं कर रही.
वेरी नाइस. और जैसे आपको पता चला कि आपको वहां से क्लिक किया कि आप इतनी प्यारी हैं, आपको मॉडलिंग में आना चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए, सो पहला प्रोजेक्ट क्या था, कर नर्वस हुई आप उस प्रोजेक्ट में?
बहुत बहुत. जो शूट्स का तो खैर एसएच नहीं था. हाँ ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि कुछ नहीं पता था शूट्स में भी, इवन आई नो नथिंग. और फोटोग्राफर को काफी खपना भी पड़ा था बार बार बताना और पोस्चर ये वो. तो ऑब्वियसली जो न्यू कमर होता है वो न्यू कमर ही होता है एंड आई वॉज द सेम एज वेल. और इसी तरह से जब ड्रामास का भी हुआ और जो होस्टिंग का एक्सपीरियंस भी हुआ, इट वॉज द सेम एज वेल. ड्रामा में भी मुझे याद है कि हमारी सीनियर आर्टिस्ट ने सबा फैसल, वो मदर का कैरेक्टर कर रही थी, फिर दोस्त जमाल फादर का कैरेक्टर कर रहे थे और माशाल्लाह दोनों ही बहुत सीनियर हैं और उनके साथ काम करना. और फिर सीनियर एक्टर्स प्रेशर भी डालते हैं न्यू कमर पे, इसमें कोई शक नहीं है. थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, नर्वस करते हैं, थोड़ा लाउड वॉइस कर देंगे तो वो हम जाहिर जो नया बंदा होगा वो डर जाएगा. तो प्रॉब्लम्स थी नो डाउट, शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स थी. और सेम विद द होस्टिंग. और उसमें ये है कि मुझे अभी भी याद है कि कैमरा के साथ बिल्कुल चार्ट पेपर पर लिख लिख कर हमारे जो डायरेक्टर थे वो स्क्रिप्ट रखते थे और मुझे मैं उसको देख देख के पढ़ती थी और फिर एक्सप्रेशन देना. तो बल्कि मेरा जो फर्स्ट एवर होस्टिंग का प्रोजेक्ट था दैट वॉज फॉर पीटीवी, तो उससे मुझे फायदा ये हुआ कि पीटीवी की क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है यहाँ, यहाँ पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, जितना मर्जी अब आप डिफरेंट चैनल्स के नाम ले लें, बट नो डाउट जो नेशनल टीवी की एक है व्यूअरशिप वो दूसरा चैनल की नहीं है, आर्टिस्ट को वो बहुत बूस्ट करते हैं। तो मुझे थोड़ा मेरी लक ये हो गई, ड्रामा प्रोजेक्ट जो मेरा लाइफ का पहला था दैट वॉज फॉर पीटीवी, और इवन फॉर होस्टिंग जो मेरा प्रोग्राम था वो भी पीटीवी के लिए ही था।
जब आपने पीटीवी के साथ किया वहां पर बहुत सारे सीनियर जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने काम में बिल्कुल माहिर हैं, जो मुझे लगता है जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं वो काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, इतना कमर्शलाइज्ड काम होता है कि वो न्यू कमर को इतना सीखने का शायद मौका ना मिलता हो वहां पर।
नहीं बिल्कुल ऐसा ही है अक्सर, और अब तो आजकल का अगर मैं टाइम पीरियड आपको बताऊं, आप इवन सोचो हम लोगों को स्क्रिप्ट भी नहीं मिल रहा होता, एक होता है पहले एडवांस में स्क्रिप्ट मिल जाता था, हम पहले गो थ्रू कर लेते हैं, कैरेक्टराइजेशन सोच लेते हैं, लेकिन अब हम खुद अब इतना काम करके भी 7-8 years होने वाले हैं, लेकिन जब सेट पर जाओ तो स्क्रिप्ट मिल रहा होता है, और अब क्योंकि अब एटलीस्ट एक्सपीरियंस है तो हम साथ साथ मेकअप हो रहा है, साथ साथ वार्डरोब चेंज हो रहे हैं और हम अपनी लाइन्स कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक न्यू पर्सन है जो न्यू टैलेंट है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब इतने प्रोडक्शन हाउसेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक अच्छी बात भी है कि ठीक है कंपटीशन है आपस में, और अब अगर एक यहाँ पे क्योंकि आपको पता है मीडिया में एक फेवरेटिज्म भी बहुत होता है, ग्रुपिंग बहुत होती है, तो अगर एक प्रोडक्शन हाउस आपके साथ कोई नहीं उस तरह से आपकी बन पा रही है तो वो आपके पास यू डू हैव एन ऑप्शन, आप दूसरी जगह पर भी काम कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बस आप जैसे जैसे काम करोगे तो आपको वैसे ही एक्सपीरियंस गेन होगा और उसी तरह आप सीखोगे।
बिल्कुल बिल्कुल। और हमें ज्वाइन इन किया जी तनवीर ने, और तनवीर भी किरण बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। जी तनवीर कहाँ से शुरू करेंगे आप?
यकीनन मैं तो यहीं से शुरू करूंगा। सबसे पहले तो कहते हैं जी आपको खुश आमदीद आश, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन इन किया ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू सो मच एंड इट्स माय ऑनर, और आप लोग भी इतनी दूर बैठे हैं और हम लोगों को इतनी दूर से लोगों को याद करते हैं और अपने शो में शामिल करते हैं, अपना हिस्सा शो का बनाते हैं, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर इट, थैंक यू।
अच्छा ऐश ये बताइएगा, मैंने अभी रिसेंटली आपका हम टीवी पे एक ड्रामा चल रहा था, मुझे एग्जैक्टली ड्रामे का नाम नहीं पता क्योंकि हम ड्रामे जरूर देखते हैं लेकिन बहुत से ऐसे ड्रामे होते हैं जिनकी स्टोरीज हमें याद रह जाती है। हाँ माँ सदके था जिसमें आपका मेरा ख्याल है उस्तानी जी का एक कैरेक्टर था, आप टीचर थी उसमें, और जो कजन होती हैं आप वो जो भाई साहब बहुत, हाँ जी, तो उस हवाले से बताइएगा क्योंकि अभी लोगों ने रिसेंटली वो ड्रामा देखा है उसमें आपका एक नेगेटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर था और अभी आपका एक ड्रामा आने वाला है A+ पे, A+ भी यहाँ पे यूके में बहुत देखा जाता है, इश्क या रब्बा, तो दोनों के हवाले से बताइएगा उसमें आपने एक नेगेटिव रोल किया वो कैसा रहा और आने वाला जो ड्रामा है इसमें आपका रोल कैसा है?
जो माँ सदके का था इट वॉज प्योरली नेगेटिव कैरेक्टर ऑब्वियसली, और मुझे वो बिल्कुल खुद अच्छा नहीं लगा बिकॉज उसमें एक टीचर का बहुत नेगेटिव, क्योंकि टीचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो बच्चों के साथ तो स्टूडेंट के साथ वैसे ही बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसमें बिकॉज शी वॉज इन लव विद समवन सो उस वजह से जो था वो एक नेगेटिविटी थी कैरेक्टर में, जो मुझे चीज उसमें थोड़ी लगती थी एक्ट करते हुए कि सर बच्चे के साथ उस तरह से नेगेटिव एक्ट करना जो था नहीं, हालांकि ऑफसेट अच्छा अब्दुल रहमान नाम है उसका, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, गपशप रही हमारी बात रही, बट इसी तरह वो था आई स्टिल रिमेम्बर कि उसमें हाशिर की जो बेटी थी शी वाज अ वेरी क्यूट गर्ल, वो मुझे कहती थी कि व्हाई आई डोंट लाइक यू, यू आर सो नाइस, यू आर वेरी फ्रेंडली, बट देखिए मुझे ऑन सेट जो है वो आई हेट यू, तो ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है। सो वो नेगेटिव था, बाकी जो इश्किया रब्बा में इट वॉज इश्किया रब्बा में थोड़ा ट्विस्ट उन्होंने दिया था कि बिकॉज इन द स्टार्ट आई एम प्लेइंग अ पॉजिटिव कैरेक्टर, आई लव माई सिस्टर और सिस्टर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग खाई हुई है और वो हर तरह उसे सपोर्ट भी करती है, बट कुछ इसमें सिचुएशन स्टोरी में ऐसी होती है कि मेरी एंगेजमेंट टूट जाती है और इनडायरेक्टली द रीजन इज माय सिस्टर, सो यहां से जो है इफ्फत कैरेक्टर है जिसका एकदम से ट्रांस जो है वो चेंज होता है और वो फिर अपनी सिस्टर के साथ ही बहुत ही ज्यादा एक विलनिश कैरेक्टर उसका काम स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक थोड़ा सा ट्विस्ट, बल्कि भी जो रिसेंटली एपिसोड्स हैं उसमें यही है कि आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर और वो पॉजिटिव से टर्न हुआ है नेगेटिव में।
अच्छा ऐश ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के मैसेजेस हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूके यूएस दुबई, आप सभी लोगों के ड्रामे जो है वो बहुत पसंद किए जा रहे हैं, कहानी बहुत जबरदस्त किस्म की है, तो अगर ऐसे ही जैसे एहसन खान का जैसे आपने ड्रामा देखा होगा उडारी, इस किस्म का कोई सब्जेक्ट आता है विच इज लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म के ड्रामे बहुत से लोग कहते हैं बनने चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं नहीं बनने चाहिए, इस किस्म का कोई चैलेंजिंग कैरेक्टर आपके लिए आता है तो क्या आप उसके लिए जाएंगी, और अगर जाएंगी तो क्या फ्यूचर में इस किस्म की फिल्में भी बहुत सी आ रही है, मैंने सुना है कोई फिल्म का कैरेक्टर करने का इरादा भी है आपका?
मूवीज में तो एज सच मेरा भी जिसे कह लें कि कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज मूवी जो है वो क्वाइट टफ टारगेट, बिकॉज एक तो वो टाइम बहुत ज्यादा लेती है, जितनी टाइम में मूवी बन रही है उतने में आप काफी सीरियल्स एंड सोप कर लेते हैं. दूसरी ये चीज है कि मूवीज के साथ बहुत से इश्यूज भी रिलेटेड रहते हैं, आपको पता है सेंसर बोर्ड का इशू होता है, फिर कुछ उसके और होती है शूट्स रीशूट्स, फिर आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटीज के इश्यूज होते हैं, तो जाहिर हमें फैमिली को भी देख के साथ चलना पड़ता है. सो मूवी तो खैर मेरा एज सच नहीं है, बट बाकी ड्रामास का जिसने आपने कहा सोशल इश्यू बेस पे जो कोई भी प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली मैं तो कहूंगी करना चाहिए, बिकॉज हमारा ड्रामा मीडियम एक ऐसा मीडियम है जो लोग इवन मैसेस और आप किसी भी क्लास की बात करें लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते भी हैं. अभी रिसेंटली एक और प्रोजेक्ट हमारा गया एक चैनल से मेरी गुड़िया के भी नाम से, उसमें जैनब केस जो था उसको लेकर उन्होंने काफी हाईलाइट,
बिल्कुल मोहसिन अब्बास हैदर भी उसमें काम किया मोहसिन ने. जी जी
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड मोहसिन डिड अ वेरी ग्रेट जॉब, के आई रियली हेट हिम राइट नाउ, तो ये उनके कैरेक्टर की पॉजिटिविटी है. सो सोशल इशू बेस्ड प्रोग्राम्स हो या ड्रामा हो वो चलने चाहिए, क्योंकि आप अवेयरनेस दे रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, क्योंकि अब वो दौर नहीं है पाकिस्तान में, इवन अब वो मेंटेलिटी नहीं है कि अगर ऐसी कोई चीज है तो आप कहोगे हो ये क्यों बात कर दी, ये नहीं करनी, ये आपको अपने बाबा से नहीं करनी, ये भाइयों से नहीं करनी, स्कूल में डिस्कस नहीं करनी. अब मेरे ख्याल से जितना अब इवन पूरे वर्ल्ड की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, जितना अब वो तरक्की कर रहे हैं, आपके अब 4-5 years का भी अगर कोई बच्चा है उसके इतना ज्यादा है अब वो इस मेंटल लेवल पे कि वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करता है और इन चीजों को समझता है. अब ये डिपेंड करता है हम पर कि हम उसको पॉजिटिव वे में कैसे उसके तमाम सवालों के जवाब उसके माइंड में सेट करते हैं.
सही. तो ऐश बताइएगा कि इश्क या रब्बा के अलावा आपके कोई फ्यूचर में कौन से ऐसे ऐसे ड्रामे आ रहे हैं जिनको हमें यूके की जो ऑडियंस है वो देखने वाली है, कोई अभी इस वक्त कोई पोस्ट प्रोडक्शन में ऐसा कोई ड्रामा चल रहा है, कोई स्क्रिप्ट आपके सामने, कोई फ्यूचर में कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट है?
अभी एक प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी ऑन एयर है जियो टीवी पे साया के नाम से. अभी मैंने रिसेंटली इस टीम को ज्वाइन किया बिकॉज इट्स अ सोप, सो वो 100 episodes से अबव जाते हैं, तो उसमें अभी मतलब मेरा कैरेक्टर आई थिंक 5 days की शूट मैंने करवाई है और वो ऑलरेडी ऑन एयर, क्योंकि वो साथ साथ ऑन एयर जा रहा है. वो मेरा अभी सो फार अभी क्योंकि बाकी दो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए अभी जो है जिसे कह लें कि अभी कास्टिंग हो रही है, सो वो अभी तो बहुत जिसे कह लो स्टार्टिंग स्टेज पर है, सो लेट्स सी कि वो किस चैनल के लिए करते हैं. बाकी इस वक्त जो साया का ऑन एयर जा रहा है बिकॉज इट्स अ हॉरर प्रोजेक्ट और बहुत 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 मुश्किल लगा मुझे बिकॉज मेरा एज सच हॉरर प्लेस का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था. कॉमेडी भी की है, नेगेटिव रोल भी किए हैं, पॉजिटिव भी किए हैं, बहुत मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट आपको डायलॉग बस सीधे सीधे मतलब हैं आपके एक दूसरे कैरेक्टर्स के साथ. हॉरर इज समथिंग डिफरेंट और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा डे वन शूट था तो उसपे ऑलरेडी मुझे कह दिया गया था क्योंकि हमारे लेट नाइट शूट्स होते हैं, क्योंकि सारे ट्रीटेड सीन होते हैं वो भी टाइम लेते हैं और डायरेक्टर जो है वो क्वाइट टफ है बिकॉज ही वॉन्ट परफेक्शन, चाहे वो टॉकी सीन है चाहे वो आपके बिल्कुल म्यूट सीन है. तो ये भी सो फार बहुत बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जब हम सेट पर होते हैं वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, गपशप भी लग रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है और एकदम से आपने फिर हॉरर एक्सप्रेशंस लाने हैं, ये बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस है. और इसका भी ये है कि मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है. इवन डे वन मेरा जो ऑन एयर गया था एपिसोड का, उसके बाद से ही इंस्टा के थ्रू FB के थ्रू मैसेजेस आ गए थे. सो आई थिंक ये एक अच्छा है, मेरे लिए भी थोड़ा टर्निंग पॉइंट है, थोड़ा डिफरेंट है हॉरर का एक्सपीरियंस भी, बट लेकिन ये है कि वेरी टफ, वेरी टफ.
अच्छा ऐश, यहाँ पे समीउल्ला भाई कह रहे हैं कि अगर माशाल्लाह से आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है तो यकीनन आप कुछ गुनगुनाती भी होंगी, और अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें हमारे सुनने वालों को कुछ सुनाना चाहें तो प्लीज
कुछ अच्छा सुनाना चाहें.
नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गाना जो है सुनना बहुत पसंद है और म्यूजिक एंजॉय भी करती हूँ, म्यूजिक लवर हूँ और मूड के साथ जो है म्यूजिक सुनती हूँ, लेकिन गाती खुद इसलिए नहीं क्योंकि अगर मैंने गाया ना तो आपकी अपनी वॉइसेस इतनी अच्छी हैं, अक्सर साउंड सो कूल और इवन यू, तो मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छी हम गपशप करें बातें करें तो आप लोग जो है ना भाग जाए.
अच्छा जब आप इतनी अच्छी म्यूजिक लवर हैं तो आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है, कौन सा किनको आपको सुनना पसंद है, कैसा म्यूजिक सुनती हैं आप?
वैसे तो अब अगर इट डिपेंड्स ऑन मूड, लेकिन पर्सनली मुझे ना पुराने गाने ज्यादा वैसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि पुराने गानों में ना शायरी है, पाकिस्तानी कुछ भी है, बट पुराने गानों में शायरी थी. हमारे अब के गाने जो है उनमें शायरी कम है, लेकिन म्यूजिक को ज्यादा फोकस किया जाता है. तो अगर आजकल के मैं कहूँ म्यूड के हिसाब से, अगर म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे बादशाह के गाने बहुत पसंद है. और अगर इसी तरह से हमारे अपने पाकिस्तानी म्यूजिक की बात की जाए, तो मुझे कोक स्टूडियो के जितने भी गाने हैं, जितने भी उसकी एपिसोड्स गई हैं, मुझे वो ऑलमोस्ट सब पसंद है. बट मेरी पाकिस्तान में राइट नाउ फेवरेट सिंगर आयमा बेग है. मुझे उनकी आवाज, उनके गाने, मुझे वो आयमा बेग के गाने बहुत पसंद है.
वेरी नाइस. और आपके लिए मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं. साकिब चौधरी साहब ने आपके लिए मैसेज किया, जासिम आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, और मीठा जहन ने आपके लिए मैसेज किया है, और जहूर सहन साहब को तो आप बेनजीर वाले, जब आपने बात की ना तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पार्टी से हैं.
बट ये है कि बट मेरा मानना है कि जैसे पार्टी की भी बात होती है, आजकल तो पॉलिटिकल इश्यूज की बड़ी हवाएं चल रही होती हैं, बट मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर पाकिस्तानीज, वी लव पाकिस्तान. और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें अपने कंट्री के लिए, और जितने भी हमारे वो लोग जो कंट्री से बाहर डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें अपने पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखानी है. नेगेटिविटीज को कम डिस्कस करना है, बट पॉजिटिव भी बहुत कुछ है. तो इसलिए जो है मैं तो यही कहूंगी कि हमारे जितने भी लोग जो इंटरनेशनली बाहर मौजूद हैं, जैसे आप लोग भी बाहर बैठे हैं, और आप लोग तो बल्कि हमसे भी कहीं ज्यादा यकीनन पाकिस्तान को मिस भी करते होंगे और प्यार भी करते होंगे.
बेशक. अच्छा आश जी, अजीम साहब का यहाँ पे सवाल आया. अजीम साहब कहते हैं कि कोई ऐसा फनी वाकया, क्योंकि शूटिंग के दौरान जब हम लोग वो देखते हैं फनी ब्लूपर्स के आती हैं चीजें, कोई ऐसा वाकया जो आपके साथ शूटिंग के दौरान पेश आया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसा बहुत ही सीरियस किस्म का सीन हो जो ऑल ऑफ अ सडन चेंज इनटू अ वेरी वेरी फनी सीन, कोई ऐसा वाकया हुआ?
बहुत होते हैं. इवन मैं जब प्रोग्राम होस्ट करती थी उस वक्त हमारे ब्लूपर्स बड़े रिकॉर्ड भी किए जाते थे, क्योंकि आई यूज टू होस्ट अ शो पेज 3 और वो कंप्लीट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था. और उसमें सबसे मुश्किल बात ये थी बिकॉज मेरा हाफजा थोड़ा तेज है, स्क्रिप्ट जल्दी जल्दी याद हो जाता है, तो उसमें हमारे पूरे पूरे लिंकिंग्स होती थी और बॉलीवुड हॉलीवुड न्यूज होती थी, पूरा याद करना पड़ता था. तो उसमें भी काफी हमारे ऐसे ब्लंडर्स होते थे. लेकिन अगर कॉमेडी की बात की जाए, जैसे मुझे रोना नहीं आता, मुझे ऑन सेट अगर मुझे रोने का सीन दे दो तो मेरी हंसी छूटती है, मुझे रोना नहीं आता. तो उसमें ये होता है कि आईज में ग्लिसरीन डाल डाल के, और फिर ग्लिसरीन भी गायब हो जाती है, फिर भी रोना नहीं होता. अभी जैसे मैंने बात की जो साया प्रोजेक्ट ऑन एयर है, उसमें जैसे दिखाया कि मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी हो रही है, मैं सीढ़ियों से गिर रही हूँ और घर में भूत है, आसेब है, और उस तरह से भागना करना ये सब, तो मेरे लिए तो ऑन सेट डेली, क्यों, बिकॉज आई एम वेरी टॉकेटिव. तो सेट पे गपशप लग रही थी, हंसी मजाक होता, और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जब ये सब चीजें करनी पड़ती हैं तो ये एक्सपीरियंस रहता है. और सबसे मुश्किल अभी जैसे इस आया प्रोजेक्ट में ही था कि मुझे सीढ़ियों से गिरना था, और मेरे अंदर सबसे मुझे एक लगता है, आई डोंट नो वी कॉल इट अ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, मुझसे आर्टिफिशियल एक्ट नहीं होता. जैसे अगर कोई गला दबाने का सीन है, कोई थप्पड़ मारने का सीन है, तो मैं वो रियल करवाती हूँ कि आप रियल में करो, क्योंकि जब तक आप रियल में मुझे पेन फील नहीं होगी, मैं रोऊंगी नहीं, आंसू नहीं आएंगे. और इसी तरह भी रिसेंटली था कि जी सीढ़ियों से गिरना है, और दैट वॉज रियली फनी टू मी, बिकॉज मुझसे आर्टिफिशियली मुझसे गिरा ही नहीं जा रहा था. और मैं ये भी साथ साथ सोच रही थी कि अगर मैं गिरूंगी और मुझे चोट लग गई तो फिर मेरा क्या होगा और कितनी तकलीफ होगी.
तो फिर आप कैसे गिरी?
चीजें तो बहुत मुश्किल था, मैं बहुत बुरी गिरी थी और मैं फेक लग रही थी बिल्कुल. मुझे डायरेक्टर से डांट पड़ी, बिकॉज इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो और वो बिल्कुल नए नए, बिकॉज वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो एक वो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी होता है इफ समवन न्यू इज वर्किंग विद यू, तो उनको इम्प्रेस करना कि वो कोई ऐसी उन्हें ना लगे कि भी हम एक्ट अच्छा नहीं कर रहे. और बहुत मुश्किल था, 2-3 दफा तो ऐसे ही गिरी और अगले एक्सप्रेशन दे दिए. फिर उन्होंने मुझे कहा जी कुशन्स भी गिराने हैं. मैंने कहा भैया कुशन पे फोकस कर लो या मेरे गिरने पे फोकस कर लो, एक ही चीज होगी.
अच्छा अच्छा जी, मेरे पास एक सवाल आ गया हारून भाई का. ये अमूमन सवाल जो है टीवी शोज में किया जाता है, जैसे मजाक रात में सवाल है. उन्होंने कहा है कि जी तीन हीरोज हैं, फवाद खान है, अली जफर है, और इसके बाद तीसरा उन्होंने कहा कि इमरान है, इमरान अब्बास. इन तीनों में से आप बताएं किसके साथ सबसे पहले नंबर पे काम करना चाहेंगे, दूसरे नंबर पे किसके साथ, और यानी कि जिसके साथ आप ना ही करना चाहें काम तो वो बेहतर है. तीन बंदे हमने आपको बताए.
मेरे ख्याल से पहले नंबर पे ना जिसके लिए कोई लड़की ना कर ही नहीं सकती फवाद खान, आई लव हिम, ही इज सो सो क्यूट. और फवाद खान के लिए तो ऑलवेज यस.
सही.
सेकंड ऑप्शन इज अली जफर. अली जफर की अभी रिसेंटली थीफ एंड ट्रबल बहुत अच्छी मूवी उनकी गई है. सो सेकंड नंबर पे अली जफर. इमरान अब्बास मुझे पसंद ही नहीं है, उनका तो आप बिल्कुल नंबर कट ही कर दो.
अच्छा, यानी कि हमने जो वो क्रिएट करनी थी वो तो आपने क्रिएट ही नहीं करने दी.
हाइप क्रिएट करना चाहते हैं आपके लिए.
नहीं, बिकॉज ऑटोमेटिकली आई डोंट नो व्हाई बट इट्स साउंड वेरी फनी. इमरान अब्बास एंड द अदर एक्टर एहसन खान, नो डाउट बहुत हमारे जिसे कह ले बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, प्रिटी फेसेस हैं, लड़कियों को बहुत पसंद है. बट आई डोंट नो व्हाई वो मुझे बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है हम लड़कियों जैसे हैं.
अच्छा जी, मसरूर साहब ने यह सवाल किया है ऐश, वो कह रहे हैं कि आपने पिछले ड्रामे में इफ्फत के साथ ज्यादती की, अगले ड्रामे में आप खुद इफ्फत आ रही हैं, कैसा लग रहा है?
ये इतनी पुरानी बात किसको याद है?
देख लें फिर.
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है. और कैरेक्टर चेंज होते रहे वो भी एक अच्छा, क्योंकि आप क्योंकि मुझे जो मेरा एक सोफार एक्सपीरियंस है 6-7 ईयर्स का, जो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत मिले हैं. जबकि मैं खुद जब मुझे न्यू कॉल आती है मैं उनसे कहती हूँ मैं मासूम भी लग सकती हूँ, मजलूम भी लग सकती हूँ, मेरी चोटी बना दो और बिल्कुल मेकअप रिमूव करके बिल्कुल गंदे से कपड़े पहना दो, मैं भी
मेरा ख्याल है कि हाँ हमारी कॉल जो है वो हो चुकी है ड्रॉप. चलें जी, बहुत शुक्रिया ऐश, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और यकीन मानिए बहुत जबरदस्त आपके साथ गपशप रही. एंड आ चुकी हैं वापस. चलें जी, आपको आ चुकी हैं वापस साहब ऐश.
जी जी जी,
हाँ ऐश को हमारी आवाज आ रही. चलें, कोई मसला नहीं. तो जी, आप बात कर रही थी इफ्फत के हवाले से.
हाँ, बस वही है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स करना अच्छा लगता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. और नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टर करके भी आप बहुत तंग आ जाते हो, फिर आपको थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी चाहिए होता है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे रोना बहुत मुश्किल से आता है सेट पे, बिकॉज आई एम वेरी टॉकेटिव एंड टॉकिंग टू एवरीबडी. सो वो रोने वाले सीन से बचने के लिए मैं फिर नेगेटिव प्रेफर करती हूँ, क्योंकि नेगेटिव वाले रुलाते हैं, रोते कम है.
सही. अच्छा ऐश, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जाने से पहले अगर आप अपनी तमाम सोशल मीडिया डिटेल्स हमारे सुनने वालों को बताना चाहें ताकि वो डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर सकें, आपका इंस्टा, आपका फेसबुक, आपकी स्नैपचैट, कोई भी ट्विटर जो आप इनसे शेयर करना चाहें और ये लोग डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट कर सकें.
बिल्कुल जरूर. स्नैपचैट वगैरह तो आई एम नॉट यूजिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरनेट पे भी जिसे कह लो कि रहना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबको रिस्पॉन्ड करना. बट इंस्टाग्राम पे है @ 09 खान के नाम से, और फेसबुक पे है @ खान9 digit 9. ये मेरा जो है वो पेज है. सो पेज पर भी जो है वो मैसेजेस कर सकते हैं. कोशिश होती है कि इनबॉक्स में जितने भी मैसेजेस आ रहे हो रिस्पॉन्ड कर सकूं, लेकिन नहीं भी अगर कर पाती तो मैं ओवरऑल ऑन वॉल में सबको जरूर जवाब देती हूं. और इसी तरह से इंस्टाग्राम वगैरह पे भी जो भी लोग हों उनको कोशिश होती है कि रिप्लाई हो. सो @ 09 खान इज एन इंस्टा अकाउंट और @ खान digit 9 इज माई पेज अकाउंट, फेसबुक पेज अकाउंट.
सही ऐश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. जो ही आपका इंशाल्लाह कोई नया प्रोजेक्ट आता है हम एक बार फिर आपको जहमत देंगे अपने शो के लिए. तो यकीनन आप हमारे लिए, जब कभी भी आपका कोई नया प्रोजेक्ट आए तो हमारे लिए वक्त आपने आधा घंटा जरूर बचा के रखना कि ये हमने रेडियो संगम को देना है.
बिल्कुल बिल्कुल जरूर. और अगेन इट्स अ रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू. और अक्सा से भी बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे भी बहुत अच्छा लगा. और यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और आप दोनों की वॉइस माशाल्लाह बहुत अच्छी है. सो मेरा लास्ट आप लोगों का सजेशन ये है कि गाने भी खुद गाना शुरू कर दें. सीरियसली
मैं कभी कभी गा लेता हूँ वैसे.
तनवीर का, तनवीर का तो ये पार्ट टाइम जॉब है.
आपने गाना गाना है.
इंशाल्लाह मैं आपको अपना यूट्यूब का जो लिंक है वो मैं इनबॉक्स करूँ. Halifax and beyond.